भर जाए। हर एक गुण जो सदा लुटाए, सुख से जीवन भी भर जाए। हर एक गुण जो सदा लुटाए, ज्ञान बहाए अमृत की धार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार, शिव पिता से रहे बस प्यार। योग हो जीवन का धार, शिव पिता से रहे बस प्यार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का धार।
इतना है मुझ पे तेरे प्यार का असर, इतना है मुझ पे तेरे प्यार का असर। तू ही तू दिखता है बाबा, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर। तू ही तू दिखता है बाबा, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर। देते चले दुआएं और देते चले दुआएं, हम खुद भी सजते रहें औरों को भी सजाएं। देते तले दुआएं और देते तले दुआएं, हम खुद भी सजते रहें औरों को भी सजाएं। ऐसे तेरे दुआओं का हो मुझ पे सदा असर, ऐसे तेरे दुआओं का हो मुझ पे सदा असर। तू ही तू दिखता है बाबा, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर। तू ही तू दिखता है बाबा, देखूं मैं जिधर, देखूं मैं जिधर। दिल में है हर पल तुझको बुलाना पाऊं, यादों में सदा तेरे खुशियों के गीत गाऊं। दिल में है हर पल तुझको बुलाना पाऊं, यादों में सदा तेरे खुशियों के गीत गाऊं। कट जाए हंसते हंसते जीवन का ये सफर, कट जाए हंसते हंसते जीवन का ये सफर। तू ही तू दिखता है बाबा, देखो मैं जिधर देखो मैं जिधर, तू ही तू दिखता है बाबा, देखो मैं जिधर देखो मैं जिधर, इतना है मुझ पे तेरे प्यार का असर, इतना है मुझ पे तेरे प्यार का असर, तू ही तू दिखता है बाबा, देखो मैं जिधर देखो मैं जिधर, तू ही तू दिखता है बाबा, देखो मैं जिधर देखो मैं जिधर, तू ही तू दिखता है बाबा, देखो मैं जिधर देखो मैं जिधर।
ओम शांति। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का ऑक्सीजन पवित्रता। इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी उपनिषदों में कहीं आई है जिसमें दिखाया है एक युवक सन्यासी तपस्या कर रहा है, एक योगी घने वन में तपस्या कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी तपस्या सघन होती जाती है। धीरे धीरे अन्न का त्याग करता है और तपस्या बढ़ती है, जल का भी त्याग कर देता है। सारे दिन भर तपस्या मगन अवस्था में उस घने जंगल में रहता है। उसकी उस तपस्या से वहां का वातावरण भी शांत होने लगता है। और उसका हिलना डुलना, उस ध्यान से बीच बीच में बाहर आना, वो भी कम कम होने लगता है। ऐसे में कहानी में दिखाया है एक स्त्री वहां से गुजरती है, एक कन्या, और उसको इस तपस्वी का तेज आकर्षित करता है। वो भी एक बहुत बड़ी भक्त होती है, सोचती है कि मैं इस तपस्वी की थोड़ी सेवा करूं, और वो उसकी सेवा करना करने लगती है। परंतु वो ये लक्ष्य भी रखती है कि मेरी वजह से इसकी तपस्या भंग ना हो जाए, इसके लिए गुप्त रीति से मैं इसकी सेवा करूंगी। तो चुपचाप उसके लिए कभी जल ला के रखती है, तो कभी फल ला के रखती है, स्वयं को दिखने नहीं देती, अप्रगट। उसका लक्ष्य होता है कि इसकी साधना में कभी कोई बाधा ना आए, क्योंकि यह ब्रह्मचारी है, यह तपस्वी है, मेरा दर्शन उसे ना हो ना पाए, इतना वो ध्यान रखती है, क्योंकि वो खुद भी एक साधक होती है। तपस्वी की तपस्या और तेज होती है। बाह्य जगत, बाह्य संसार से उसकी विरक्ति बढ़ती जाती है। देह के धर्म, भूख प्यास निद्रा, इनसे वो ऊपर ऊपर उठने लगता है। एक दिन जब वो युवती कुछ फल रख रही होती है, तो अचानक इस तपस्वी की आंख खुलती है, और वो तपस्वी उसे देखता है और फिर आंख बंद कर लेता है, फिर अपनी तपस्या में मगन हो जाता है। वो स्त्री घर आती है और पश्चाताप करती है, शायद मेरी वजह से इसकी तपस्या भंग हुई। परंतु अंदर ही अंदर उसे थोड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वो चाहती थी कि वो मुझे देखे। उसे ये तो पता चले कि कौन इसके लिए फल रखता है और जल रखता है, परंतु फिर भी इस पश्चाताप भाव से वो भर जाती है और सोचती है कि इस जंगल को छोड़कर मैं चली जाऊं और दोबारा ना आऊं, क्योंकि मैं शायद इस तपस्वी की तपस्या में बाधा न बन जाऊं। और वो उस जंगल को छोड़कर चली जाती है। वो युवक सन्यासी फिर से अपनी तपस्या में मगन, बहुत अधिक मगन। धीरे धीरे इतनी तपस्या बढ़ जाती है, ये दिखाया है कि देवलोक से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा है, और वो नीचे धरती पर आकर उसके कहता है कि हे महात्मन, क्या आपको चाहिए? इतनी घनघोर तपस्या किस लिए? वो कहता है इंद्र उससे कि मैं आपको अपने स्वर्ग लोक में स्थान देने के लिए तैयार हूं। वो तपस्या आंख खोलता है, कहता है मुझे स्वर्ग के किसी भी पद की अभिलाषा नहीं है। इंद्र कहता है मैं तुम्हें स्वयं अपना पद देने के लिए तैयार हूं, अब तो मानो। वो कहता है मुझे इंद्र पद की भी कामना नहीं है। इंद्र को आश्चर्य होता है कितने तपस्वी देखे पर ऐसा तपस्वी नहीं देखा, और इंद्र उससे कहता है क्या तुम्हें मुक्ति की आकांक्षा है? क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? मैं तुम्हें मोक्ष भी दे सकता हूं, बस तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो युवक सन्यासी कहता है मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है। इंद्र उससे पूछता है फिर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ वो तपस्वी कहता है, वो युवती कहाँ है? कहानी यही पूरी होती है। वासना अति सूक्ष्म है, चित्त में काम बैठा है, चिंगारी की आवश्यकता है, छोटे से ट्रिगर की आवश्यकता है, और जब तक वह वासना, वह काम, वह अभिप्सा अंदर है, तपस्या नहीं हो सकती। इस तपस्वी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता एक बहुत बड़ी मंजिल है, और उस मंजिल, उस इमारत, उस भवन का जो आधार स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। जब तक वो ब्रह्मचर्य नहीं, तब तक पवित्रता की यह इमारत, ये भवन तैयार नहीं हो सकता। पवित्रता यदि मंजिल है तो ब्रह्मचर्य प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। जब तक ये सीढ़ी शक्तिशाली नहीं, तब तक ये इमारत नहीं बन सकती। और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्ण पवित्रता। मनसा, वाचा, कर्मणा, स्वप्न, बाबा ने कहा है तुम्हारी पवित्रता जग का आधार है, तुम्हारी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है, तुम्हारी पवित्रता के बल से ही यह विश्व परिवर्तन होगा। भगवान इस संसार में एक ही कार्य करने आया है, कौन सा? पतित को पावन बनाने। बाबा ने क्रोध के लिए इतना नहीं कहा है, लोभ के लिए नहीं, मोह के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, उसका कार्य एक ही है, पतित को पावन बनाना। पतित का संबंध काम विकार से है। भारत पावन था, क्यों? क्योंकि काम विकार वहां नहीं था। पतित बना क्यों? एक ही सीमा रेखा है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, पवित्रता। सबसे पहले अपवित्रता में कौन गए? देवी देवता धर्म की आत्माएं। वाम मार्ग किसने अपनाया? क्रिश्चियन धर्म वालों ने, सिख धर्म वालों ने, इस्लाम धर्म वालों ने। वो तो पवित्र आत्माएं थी, ऊपर आए, ऊपर से आई। सबसे पहले नीचे कौन गिरी? देव कुल की आत्माएं। सबसे पहले पतित कौन बना? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, चीन, अफ्रीका। कौन बना? भारत। काम शास्त्र कहां लिखा गया? भारत। मंदिर किसने बनाए ये सारे, जिस पर कामुक दर्शन, कामुक शास्त्र, कामुक चित्र बनाए गए? भारत। और भगवान कहां आया? इसी भारत में। परित्राणाय साधुनाथ, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना करने आया है वो, उसी देश में, उसी पुराने पतित भारत में, जिसको कभी उसने पावन बनाया था, वही भारत आज पतित बना है। क्यों? क्योंकि चारों ओर विकारों की आंधी बह रही है। समाज के चित्र, समाज के उपन्यास, यहां की फिल्में, यहां के लोग, यहां का सारा ही वातावरण उस काम विकार के आघोष में है। जहां देखो वहां काम की वासना है। ऐसे कामुक युग में भगवान आया है संपूर्ण पवित्रता की स्थापना करने। आत्मा की शक्ति कम हो गई है। किस वजह से? काम की वजह से। जो ऊर्जा आत्मा में होती है वह ओज और तेज जो मस्तिष्क में बहे और शक्ति बन जाए, वह ऊर्जा, वह तेज, वह वीर्य नीचे बह रहा है। जिसे बहना चाहिए था ऊपर, नीचे बहकर शरीरों की रचना कर रहा है। एक प्रचंड शक्ति, एक प्रचंड वेग खर्च हो रहा है। किसी बगीचे में एक माली था, दिन रात मेहनत करता था। भांति भांति के फूल थे, बहुत सुंदर बगीचा था। दूर दूर से लोग उस बगीचे को देखने आते थे और वो भी खुश होता था। पूरा के पूरा वो उपवन, वो उद्यान सुगंधित था। महक थी उसमें, इतने सारे फूल और इतने सुगंधित फूल और उसकी दिन रात की मेहनत। परंतु उसकी एक आदत थी, महीना भर बहुत मेहनत करता, सारे सुगंधित पुष्पित फूल चारों ओर, सारे फूलों को एकत्र करता, उनका इत्र बनाता। उस इत्र को जाकर गंदी नाली में बहा देता। क्या कहेंगे उसे? एक कुशल माली, होशियार माली, क्या कहा जाएगा? या मूर्ख? जीवन देह में जीवन ऊर्जा बह रही है, इस देह में शक्ति है। यदि यह शक्ति स्थूल और सूक्ष्म रूप से शरीर से बाहर निकल जाए और जहां ब्रह्मचर्य का खंडन हो और वो व्यक्ति स्वयं करे, तो उसे मूर्ख माली कहा जाएगा या होशियार? ऊर्ध्वरेता योगी। ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात जीवन की ऊर्जा शक्ति सातों चक्रों को पार कर यहां पहुंच रही है। सहस्त्रार में आत्मा की एनर्जी, आत्मा की शक्ति, ऊर्जा अब खर्च नहीं हो रही है। द्वापर से अब तक उसी माली की तरह काम किया है। अब समय है तपस्वी बनने का, संकल्प से उसे रोकने का और रूपांतरण करने का। उसका दमन नहीं, दमन यदि करो तो और तीव्र वेगी होगी। जहां जहां काम दमन होगा, काम का, वहां वहां और वेग से और प्रचंड आवेग से बाहर निकलेगा। अवसर हो ढूंढेगा, अवसर की तलाश में होगा। फिर वो अवसर किसी किताब से आ सकता है, किसी वीडियो से, किसी क्लिप से, किसी पोस्टर से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्त्र से, कुछ भी ट्रिगर बन सकता है। यदि उसका रूपांतरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन न किया जाए, अगर उसे सप्रेस किया जाए तो क्या होगा? कोई प्रचंड ऊर्जा है और उसको दबा दो तो क्या होता है? विस्फोट होगा एक दिन। कुछ सन्यासी विदेश में, अमेरिका में फ्लैगिस्ट कहा जाते हैं, अपने पास एक चाबुक रखते हैं, जैसे ही कामुक संकल्प मन में आया स्वयं को मारते हैं ताकि वो ना आए, पीड़ा हो, एक चाबुक रखते हैं एंड दे फ्लैग देमसेल्फ, अपने आप को मारते हैं। परंतु परिणाम कुछ समय के बाद और हो गया, विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ, अपने को मारना चालू किया, धीरे धीरे कुछ और ही हो गया, जितना मारते थे वो संकल्प और ज्यादा तीव्र वेग से आने लगा। फिर जहां जहां काम का दमन होगा, सप्रेशन होगा, वहां विस्फोट उत्पन्न होगा। केवल अवसर की तलाश है तो क्या करें? दो मार्ग है अब हमारे पास, एक है भोग, एक है दमन। क्या किया जाए? भोग का मार्ग यदि चुन लिया जाए, कितना भी भोगो कितना भी भोगो, आत्मा तृप्त ही रहती है। कितना भी भोगो, आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया, कितने राजा होकर गए इस संसार में द्वापर से अब तक। अपनी कामुकता की बुलंदी पर जा पहुंचे परंतु अतृप्त ही रहे, क्षणिक सुख, केवल और केवल क्षणिक सुख, वो भी भ्रामक, भासता है वो सुख है परंतु प्राप्त करने के तुरंत बाद व्यर्थ सा मालूम लगता है, प्राप्त करने के तुरंत बाद एक डीप फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन कि जिससे आत्मा निकल नहीं पाती और फिर से वही भोगता है, फिर से फ्रस्ट्रेशन, फिर से वही करता है और यह आदत बन जाती है, मिलता कुछ नहीं है, एक क्षणभंगुर सुख। और वो सुख भी क्यों मिलता है? उसका भी एक कारण है, आध्यात्मिक कारण। आत्मा की प्यास सुख की है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा की प्यास, आत्मा उस परम धाम में जब थी तो संपूर्ण अशरीरी थी, वास्तव में उसका वो स्वभाव है। काम विकार से भी सुख प्राप्त होता है, काम विकार से भी कुछ क्षणों के लिए वही अशरीरी अवस्था प्राप्त होती है, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है जो योग में होता है आत्मा को, परंतु वहां एक क्षण मात्र के लिए होता है और होते ही तुरंत बाद देहभान, और फिर केवल एक प्यास उस झलक को पाने की। और वास्तव में सुख उसका स्वभाव है, परंतु सुख है अशरीरी अवस्था में उस योग में, परंतु आत्मा के पास यह ज्ञान नहीं है तो इस देह में उसको पाना चाहती है। और जैसे इस देह में उस सुख को पाती है, क्योंकि जन्म जन्म पाया है, उसे वो दिव्य, दिव्य तो नहीं कहेंगे, वो क्षणिक अनुभव होता है कुछ सेकंड्स के लिए, मेल्स 12 सेकंड्स, फीमेल्स 8 सेकंड्स, बस इतनी ही अवधि है उस सुख की, उस देह के मिलन की। वो हुआ, उसके तुरंत बाद शरीर की ऊर्जा कम हुई, नींद आ जाती है, उठती है आत्मा दुख के साथ, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, फिर वही, फिर वही, फिर वही, मरणासन्न हो जाती है, अब मरने के शैया पर है, फिर भी वंस मोर की कामना रह जाती है और इसी कामना में आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, फिर गर्भ में जाती है, फिर बड़ी होती है, फिर वही वासना आंदोलित करती है चित्त को, कभी पुरुष देह में जाती है, कभी स्त्री देह में जाती है। ये गौण है किस देह में है आत्मा, चाहे पुरुष या स्त्री, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, तीनों ही प्रकार का आकर्षण वहां तैयार होता है। और युवा, युवक उसको समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है देह में, ये कौन से हार्मोनल हार्मोन्स हाईजैक द माइंड, हाईजैक कर लेते ये हार्मोन्स, अपहरण कर लेते हैं उस विवेक का, और व्यक्ति काम विकार की ओर उन्मुख होता है. द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, इंग्लिश में कहते हैं एक बार टेस्ट कर लिया कि वहां से गिरना चालू होता है. यही हुआ है द्वापर से, क्रोध के वजह से पतित नहीं बनाया कोई, लोभ से पतित नहीं बनाया, अहंकार से नहीं. किससे पतित बना है? बाप आए हैं पतित को पावन बनाने, एक काम विकार के लिए कहा हुआ है. काला मुंह, हड़गुड़ टूट, पांचवी मंजिल से नीचे, क्रोध के लिए नहीं कहा है. तो भगवान केवल और केवल इस एक विकार से अगर कहो तो मुक्ति दिलाने आया है, क्योंकि इस एक विकार से मुक्ति होने के बाद ही आगे की यात्रा चालू होती है. ये जो देहभान, क्रोध में भी देहभान है, काम में भी देहभान है, फिर अंतर क्या है? क्या कहेंगे? क्रोध में भी देहभान की आवश्यकता है, काम में भी देहभान की आवश्यकता है, फिर अंतर क्या है? क्या कहेंगे बताइए? जितना देहभान काम में आवश्यक है, क्रोध में उतना नहीं. खान पान में भी देहभान है, परंतु जितना काम वासना में उसकी आवश्यकता है, संपूर्ण आत्मा की विस्मृति की अवस्था में ही काम विकार में उतरते हैं आत्मा. इस जीवन का लक्ष्य बाबा ने बताया है संपूर्ण पवित्रता. और जैसा हमने कहा, इस पवित्रता का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत कम है, न के बराबर. मुरलियों में ये बातें नहीं आती है, मुरलियों में बातें आती है संपूर्ण पवित्रता की, संकल्प की और स्वप्न की. यहां तक कि बाबा ने कभी कहा है व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है, साधारण संकल्प भी अपवित्रता है. ये सारी बातें मुरलियों में आती है जो हमें पता है. तो दो मार्ग बताए, एक मार्ग है भोग का, भोग करके देख लिया, मिला कुछ भी नहीं. दूसरों को भी देखा भोग करते हुए, मिला उनको भी कुछ नहीं, जीवन में वो दिव्यता नहीं आई. पतन होते ही देखा है राजा महाराजों का. अब दूसरा मार्ग है, भोग नहीं करना है तो क्या करे? फिर दबा दो, सप्रेशन, दमन कर दो उसका. इससे क्या होगा? वो जो दमित भावनाएं हैं एक दिन बाहर आएगी. जितना जोर से उसको दबाओगे, इतना जोर से वो प्रचंड वेग से बाहर आएगी. व्यक्ति संन्यास लेता है और सन्यासी बन जाता है, परंतु क्या वो काम से मुक्त हो जाता है? पूछो उन, जाकर उन सन्यासियों को, आपस में जब मिलते होंगे तो बस यही बात करते होंगे, कैसे मुक्ति पाए. यहां तक कि जो ब्रह्मचर्य और पवित्रता पर भाषण करते हैं, वो भी मुक्त नहीं है उससे. सन्यासियों का इंटरनल ग्रुप, उसमें यदि जाकर हम उनके जीवन का यदि अध्ययन करें, कुछ कुछ तो अभी भी है, परंतु अधिकतर में उस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते. आधार लिया है उन्होंने अतीन्द्रिय सुख के लिए, चरस, गांजा और इस तरह के मादक पदार्थों का, जो ब्रेन को डल कर दे और वही आत्मा की झलक मिल जाए. पर उसका भी परिणाम कुछ और ही हो गया, उसकी आदत पड़ गई, आदि बन गए, एडिक्ट्स हो गए और वो सत्य छूट गया. तो ड्रग्स मार्ग नहीं है. कोई कोई सन्यासी होते हैं जो अपने पूरे शरीर में राख लगा लेते हैं, कुंभ मेला में देखा होगा, परंतु विडंबना ये है, राख तो लगाई है देह को भूलने के लिए, देह से वैराग उत्पन्न करने के लिए, वो भी अपने पास एक छोटा सा आईना रखते हैं। आईना देखने के लिए ठीक हूं, राख किस लिए लगाई? देह को भूलने के लिए। आईना किसकी लिए है फिर? क्या राख लगा लेना मार्ग है? क्या सन्यास ले लेना मार्ग है? मार्ग क्या है फिर? एक तरफ भोग गृहस्थी, दूसरी तरफ सन्यासी, एक दोनों ही स्त्री से भाग रहे हैं। सोचता है एक भाग रहा है, एक डूब रहा है, मार्ग क्या है फिर? एक सीधा खड़ा है, एक शीर्षासन कर रहा है सन्यासी। ज्यादा अंतर नहीं है सन्यासी और उसमें, क्योंकि उसकी भी बुद्धि वही है। एक की तो है ही है, परंतु जो उससे भाग रहा है उसकी भी बुद्धि वही है। जिसका त्याग किया उसी का चिंतन चालू है। जैसे एक सन्यासी था, बहुत बड़ा लखपति था कभी किसी जमाने में, 30 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। उस समय अखबार में खबर छपी थी कि ऐसे ऐसे फला फला व्यक्ति ने सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लिया। अब वो सन्यासी है 30 साल से, प्रवचन करता है, परंतु वो पेपर की कटिंग अभी भी साथ में है, वो वाली। और हर प्रवचन में ये बात बतानी ही है कि मैंने करोड़ों की संपत्ति को लात मार दी। छोड़ा तो है पर छूटा नहीं है, पकड़ के रखा है अब तक। किसी ने हंसी में कह दिया, शायद लात ठीक से नहीं लगी। छोड़ तो दिया है परंतु मन से अब भी पकड़ा है। हिमालय पर तो चले गए, अभी भी बाजार में ही है मन में, बाजार अभी भी वही है। स्त्री का त्याग तो कर दिया है, परंतु शास्त्रों में दिखाया है कोई भी तपस्या करता है तो अप्सरा आकर नाचती है, इंद्र भेजता है। किसका यादगार है ये? ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है जहां अप्सराए हैं, और ऐसा कोई इंद्र नहीं जहां से वो भेजे। अपने ही मन में जो दमित भावनाएं हैं वही उभर कर बाहर आती है। जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ है वही बाहर निकलता है, वही इच्छा है, वही तृष्णा है। तो दो मार्ग बताए, एक था भोग का मार्ग, एक था त्याग का मार्ग, छोड़ने का मार्ग। परंतु दोनों ही मार्ग में धोखा, दोनों ही मार्ग जिसने अवलंबन किया उसको कुछ नहीं मिला। एक तीसरा मार्ग है, वो है रूपांतरण का मार्ग। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन, द वे ऑफ प्यूरिफिकेशन, पवित्रीकरण, उदात्तीकरण, दिव्यकरण, डिवाइनाइजेशन। और ये मार्ग बाबा ने आके बताया है। आज तक ये मार्ग किसी ने नहीं बताया। अब तक जो भी मार्ग, अब तक जो भी ब्रह्मचर्य और पवित्रता पर किताबें लिखी गई, सब ने कहा ये बहुत खराब है, नहीं करो। पर क्यों नहीं करो, इसका कहीं उत्तर नहीं है खास। भगवान ने आकर जो बताया वो तीसरा मार्ग बताया, जिसे कहा जाता है ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। इस शब्द को लिख के रखो सभी, ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। समझ का मार्ग बाबा ने बताया। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हम ज्ञान में आए, बाहर का खाना छोड़ दिया, ठीक है, कैसे हो गया ये? यदि कोई बाहर के व्यक्ति को बुलाया जाए और उसको कहा कि आज से 10 दिन तक बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, तो वो करेगा? अच्छा चलो, उसने मान भी लिया 10 दिन तक, पर वो क्या हो जाएगा? दमन। जैसे हमने उसके तरफ देखा नहीं और जैसे उसको अवसर मिला जाकर खा लेगा। परंतु जो ब्राह्मण बन गए वो क्यों नहीं खाते? अब इसका कारण आप बताओ। कितने अच्छे अच्छे पकौड़े बन रहे हैं मार्केट में, क्यों जाकर इच्छा नहीं होती है खाने की? ज्ञान में तो आ गए तो क्या हुआ? कुछ तो और हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक समझ आ गई, एक ऐसी की समझ आ गई कि अभी यहां बैठे बैठे संघर्ष करना पड़ता है योग में, कि आज मैं बाहर का समोसा नहीं खाऊंगा, आज मैं कुछ भी हो जाए नहीं खाऊंगा। यह संघर्ष अभी भी मन में चल रहा है क्यों? क्यों नहीं चल रहा है? रास्ते से गुजरते हैं तो यह संकल्प आता है, मैं उस दुकान की तरफ नहीं देखूंगा, मुझे सीधा जाना है, मुझे नहीं देखना है। क्यों? केवल इतना सोच सुन लिया कि नहीं खाना है, पर वो तो बाहर वाले को भी हम कहते हैं नहीं खाओ, वो तो और ज्यादा इच्छा होती है फिर खाने। जो चीज नहीं कहने को बोलो वो तो और करता है मन, ये मन का स्वभाव है। एक आयरनिक प्रोसेस थियरी इसे कहा जाता है इंग्लिश में, व्हाइट बेयर फिनोमिनन, विदेश में प्रयोग किए गए थे 80 के दशक में, कि एक ग्रुप लिया गया और उनको कहा गया कि सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है अगले एक घंटा के लिए, बाकी जो सोचना है सोचो। अभी लोग कहने लगे, उनको पहले इंस्ट्रक्शन दी गई कमरे में जाने के बाद ये करना है। उन्होंने कहा भालू से हमारा लेना देना क्या, हम क्यों सोचेंगे सफेद भालू, और उसमें भी सफेद भालू, काला भालू तो भी ठीक है, पहले तो भालू के बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमारे देश में भालू होता है, हमने खाली चित्र देखे हैं भालू के, अभी एक घंटा भालू के बारे में नहीं सोचना है, ये कौन सी बड़ी बात है। और उसमें कहा कि सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना है। एक घंटा बिठाया गया सबको और फिर अनुभव पूछा बोलो, वो बोले केवल और केवल सफेद भालू ही घूम रहा था आसपास, दूसरा कुछ भी नहीं, जबकि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, कभी देखा नहीं, ना ही वो हमारा रिश्तेदार है, कोई लेना देना नहीं। इट इज नोन एज व्हाइट बेयर फिनोमिनन, आयरनिक प्रोसेस थियरी, ये दूसरा नाम है इसका। मन को जो कहा जाए ये नहीं करना वो बार बार करता है। मन को कहो, जैसे ज्ञान सरोवर में नए लोग आते हैं पीस ऑफ माइंड रिट्रीट के लिए, विदेशी आते हैं, तो एक बार उनको कहा कि आज सारे दिन भर मौन रखना है। अब ये सब अज्ञानी, ज्ञानियों को कहा जाए मौन तो वो कर लेंगे, पर बाहर वालों को कहा गया, इतनी मुसीबत हो गई उनके लिए, बोलना तो है नहीं पर अंदर ही अंदर परेशान हो गए, इशारे से कुछ कर रहे, क्या कर रहे, कुछ कर रहे, दमन, वो लंबा समय नहीं चलेगा, वहां दमन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है। यदि किसी बाहर के व्यक्ति को लाया जाए और उसको कहा कल सुबह 4 बजे यहां पहुंच जाना अमृत वेले के लिए, अभी जिसको अमृत वेला क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान का ही परिचय नहीं, अपना भी परिचय नहीं, वो क्यों उठेगा? और यदि हमने जबरदस्ती किए तो, अगर कोई ऑफिस में ऑफिसर कह दे कि नहीं तुमको आना ही है नहीं तो एक सैलरी नहीं मिलेगी, वो आएंगे तो जरूर, परंतु मर मर के दुखी होके जबरदस्ती, और जिस दिन साहब नहीं है छुट्टी, ये मार्ग जो बताया इसको कहा जाता है दमन। ये जो बातें बताई वैसी ही बातें अब है पवित्रता के विषय में। क्या हमने संपूर्ण पवित्रता को समझा है? बाबा ने कह दिया पवित्र बनो योगी बनो, परंतु इतना काफी नहीं है। वो ठीक है खान पान के लिए तो ठीक है, बाहर का नहीं खाना हमने समझ लिया, फुल अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई, और हमने एकदम से छोड़ दिया, बाद में संकल्प भी नहीं आया, परंतु काम विकार का इतना आसान गणित नहीं है कि एक बार प्रतिज्ञा कर ली और हो गया। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है, वो भोग के संस्कार आत्मा में अब भी है। जो व्यक्ति जन्मांध है, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, उसके मन में भी उतनी ही काम वासना है जितनी जिसके पास आंख है। वो इनेट ब्लाइंड पर्सन, जिसने तो देह ही नहीं देखा है, उसमें भी वही सब उतना ही है, वही सारी इच्छाएं हैं। क्यों? हम तो कहते हैं देह को देखने के बाद सब उत्पन्न होता है, क्योंकि ये आंखों का संबंध नहीं, ये आत्मा का संबंध है। तो तीसरा जो मार्ग और जो बाबा ने आके बताया उसको क्या कहते हैं? ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। सबसे पहली बात बाबा ने जो सबसे क्रांतिकारी बात बता दी वो है कि पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, पवित्रता तुम्हारा स्वभाव है, तुम पवित्र थे, आज तक किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है, किसी योगी ने, तपस्वी ने, महात्मा ने, सन्यासी ने, साधु ने नहीं हमको बताया कि तुम ही देवता थे, बताया किसी ने आज तक? और एक दो दिन के लिए नहीं थे, एक दो चार साल के लिए नहीं थे, ढाई दिन नहीं, 250 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष तक तुम संपूर्ण पवित्र थे। एक स्मृति दिलाई याद आकर के, ऐसी एक समझ दी कि जब तुम्हारे परम धाम में थे तब तुम पवित्र थे, जब सत्युग त्रेता में तब भी पवित्र थे, काम विकार वहां था ही नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द्वापर से थोड़ा समय के लिए सब चालू हुआ, जो कि लोग कहते हैं असंभव है, परंतु ये तो सब द्वापर से चालू हुआ है। जब देह भान आया, जब आत्मा स्त्री के तन में गई, पुरुष के तन में गई, स्त्री के तन में, पुरुष के तन में, स्त्री के तन में, पुरुष के तन में, ये सारी वासनाएं उत्पन्न हुई और अब यहां पहुंची है संगम पर। जब भगवान आके सारी स्मृति दिलाई, जब तक इन स्मृतियों में हम रमन नहीं करते, जब तक ये पवित्रता क्या है इसको नहीं समझते, तब तक केवल और केवल दमन होता रहेगा। हमें याद है हमारी ओपीडी में एक बार एक आत्मा आई थी, हम नाम नहीं बताएंगे ना ही ये बताएंगे स्त्री थी या पुरुष, उसकी इतनी बड़ी फाइल थी और उसको बहुत सारी तकलीफें थी, ये भी दुखता है, वो भी दिखता है, सर भी दुखता है, यहां पे ये होता है, वहां पे बहुत सारी। एक समर्पित आत्मा, एक ज्ञान में लंबे समय से चलने वाली आत्मा, इतनी बड़ी फाइल और उसमें बहुत सारी जांच सारी हुई थी, दुनिया भर की जांचें सब नॉर्मल, एक भी जांच ऐसी नहीं थी जो नहीं कराई, एक भी शायद ही कोई डॉक्टर होगा जिसको नहीं दिखाया। वो हमारे पास आई थी, हमने उसकी फाइल देखी, फाइल में एक जगह बाहर के किसी एक साइकेट्रिस्ट ने उसे देखा था, उसने अपना डायग्नोसिस लिखा था सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। दमित काम वासना, शायद बचपन में कुछ चाहनाएं थी, शायद बचपन में बहुत कुछ देखा था, पिक्चर देखे, वीडियो देखे, सब कुछ देखा और फिर ज्ञान मिल गया, फिर वो सारा छूट गया, अब ज्ञान में ही है, दिन रात सेवा ही सेवा है, पर उन स्मृतियों का क्या, उनका क्या करेंगे, वो तो वही है, वो कहीं गई नहीं है, अवसर की तलाश है उन्हें। जैसे ही कोई डिप्रेशन आएगा, जैसे ही ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी, वो स्मृतियां जागृत होगी और फिर से खींचकर और ढकेल देगी उसी नरक में। एक गुफा की तरह है यह देहभान, वो स्मृतियां, एक बार उसमें घुसती है आत्मा, अंधकार ही अंधकार पर निकल नहीं पाती है, निकलने की कोशिश करती है, समझ गई, समझती है मैं बंद गई हूं, मुझे निकलना है, परंतु निकल नहीं पाती, मुरली सुन रही है, अमृत वेला कर रही है, दिन भर सेवा करती है, फिर भी उस गुफा में है, उस गुफा से बाहर नहीं आती, और जब बाहर आ जाती है तो पूर्ण प्रकाश, फिर गुफा है ही नहीं, या तो अंधकार है या तो प्रकाश है, जब प्रकाश में है तो फिर वो कोई संकल्प ही नहीं है। जब बाबा से मिलने जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, सब दब जाता है और सब उभर कर दूसरा बाहर आता है, परंतु जैसे यहां आ जाती है वापस अपने घर में, अपने लौकिक में, फिर से वो प्रकट होता है और ये खेल चालू रहता है। कल की मुरली साकार मुरली में था, जब तुम वहां हो और यहां हो, क्योंकि वहां तुम सम्मुख सुनते हो, यहां बुद्धि भटकती है, जैसे वो स्वामी फला फला स्वामी आता है फिर भी बुद्धि भटकती है, वही बात पवित्रता के लिए भी है। कुछ अच्छी स्मृतियां हैं, कुछ बुरी स्मृतियां हैं, क्या हम करें? फर्स्ट स्टेप है समझ, कहां कहां दमन हो गया है उसको चेक करना, कौन कौन सी इच्छाएं थी और वो क्यों उत्पन्न हुई, हो सकता है किसी फिल्म के द्वारा उत्पन्न हुई, कहीं ना कहीं इंटरनेट मोबाइल और सोशल मीडिया उसका कारण बना है, व्यक्ति कम ये सब चीजें ज्यादा, कोई किताब पढ़ी थी 10 साल पहले, वो आज अगर पूछो क्या था, भूल गया, कुछ पता नहीं। एक पिक्चर देखी थी, मूवी देखी थी 10 साल पहले, आज पूछो क्या था तो बता सकते हैं क्या थी। क्यों? क्योंकि वो 3D है। जो किताब है वो 3D नहीं है, उसमें खाली पढ़ा जा रहा है, पर जो दिखता है, जो चल फिर रहा है, जिसमें आवाज आ रही है, मूवमेंट है, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इंप्रेशन क्रिएट करता है, और वो देखा हुआ भूलता नहीं है, किताब भूल जाती है। इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कौन सा भोजन हम खा रहे हैं, आंखों से, कानों से, बहुत महत्वपूर्ण है। आज शाम का हमारा फिर से सत्र है, उसमें हम ब्रह्मचर्य के 8 नियम क्या है, कौन से वो खंडन है ब्रह्मचर्य के, अगर वो खंडित हो जाए तो ब्रह्मचर्य खंडित होता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो बहुत गहरी चर्चा होगी। टोटल हमारे पास 4 सेशन है, तो ये जो आज की क्लास थी ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, केवल ऊपर ऊपर का, और हमारी जो चर्चा होगी सीधा अगली चर्चा, शाम की जो चर्चा होगी वो बहुत गहरी चर्चा होगी। अपने मन को तैयार करके आना है, और आज सारे दिन भर केवल और केवल ब्रह्मचर्य का सोचना और पवित्रता से संबंधित जितने समान हमको याद है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता के सागर की संतान हूं, मैं पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं पवित्रता की स्थापना करने वाली आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरा स्वभाव है, मैं इस संसार में पुनः पवित्रता का धर्म स्थापन करने वाली आत्मा हूं। इस तरह से पवित्रता के विषय में जितने समान हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्माचारी हूं, मैं सनत कुमार हूं। बाबा कहते तुम्हारा उदाहरण शास्त्रों में है, भीष्म पितामह कैसी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, और जो प्रतिज्ञा की उसके बाद कितनी सारी बाधाएं आई भीष्म के जीवन में, ऐसी ऐसी बाधाएं थी कि उसमें उसे फोर्स करना पड़ा, उसकी पवित्रता की प्रतिज्ञा जो ली है उसको तोड़ दे, पर उसने कभी नहीं तोड़ी। एक तो कारण महाभारत के युद्ध का यह भी बताते हैं कि उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी, परंतु जो क्षत्रिय होते हैं, ऐसे जो धुरंधर योद्धे होते हैं, उनकी जो प्रतिज्ञा होती है प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो हमने भगवान को वचन दिया है, स्वयं को वचन दिया है। उसने कहा है एक जन्म पवित्र बनो, एक जन्म, एक मुरली है साकार, जिसमें बाबा कह रहे बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बाप बच्चों से भीख मांग रहे हैं, बच्चे इस एक जन्म पवित्र बनो, कब तक अपवित्रता का सुख लेते रहोगे, क्या पाया है उसमें, दोनों सुखों को, एक सुख वो है और एक सुख यह है अतिंद्रिय, वो एक झलक मात्र है, वो सुख है भी नहीं, वास्तव में भ्रम है कि सुख है पर है नहीं, बिलो द विप्स एक मृग मरीचिका है जो भास रहा है, इस स्पर्श में कोई सुख नहीं है, ये जो स्पर्श है इसमें कहां से सुख, ये जो देह है इसमें कहां से सौंदर्य, क्या इस देह में सौंदर्य, तो जाकर देखो हॉस्पिटल में उन मरीजों को, कहां है उनका देह का सौंदर्य, जाकर देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन गरीबों को, एक ऐसे ही चक्कर लगा के आओ, किसी को जानते नहीं, चुपचाप साक्षी होकर देख के आओ, ये देह है ना जिसके लिए इतना आकर्षण हो रहा है, कहां है वो सौंदर्य, देख के आओ उन कैंसर के मरीजों को, शरीर में कैंसर फैला हुआ है, देख के आओ उन डायलिसिस पेशेंट्स को, देख के आओ उन मरणासन्न मरीजों को, कहां है इसमें आकर्षण, क्या इसमें वास्तव में आकर्षण है, इस चमड़ी में ब्यूटी इज बट स्किन डिप, अगर इसमें इतना आकर्षण है, कहां है वो आकर्षण बुढ़ापे में, जब दांत गिर गए हैं, सुनाई नहीं देता है, देख नहीं सकते, आश्रय लेना पड़ता है, चल नहीं पाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, गीता में लिखा है इन चार चीजें मनुष्य जीवन में है। एक है जन्म, उसमें दुख है, बाबा जिसको कहते हैं गर्भ जेल, जन्म मृत्यु में दुख है। क्या वह पति अपने पत्नी के प्रति कामुक भाव रखेगा जिस दिन उसका बच्चा मर गया है? पुरुष तो वही है, स्त्री भी वही है, पर आज क्यों नहीं है वो कामुक भावना? जिस दिन बच्चा मर गया है, 10 साल का बच्चा एक्सीडेंट होके मर गया, ये केवल भावनाएं हैं, दे आर बट शैडोज शेड्स, आ रही है जा रही है, चित्त को आंदोलित कर रही है और विकार से भर रही है, क्षणिक आवेग उत्पन्न हो रहा है, क्षणिक उद्वेग्न, क्षणिक एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट उस पैशन के इन्फ्लुएंस में ही सारे कर्म हो रहे हैं। पूछ के आओ उन जेल में जो अपराधी है, सजा काट रहे हैं, वो सारे ही कुकर्म और विकर्म करने वाले पश्चाताप कर रहे जेल में। उन्हें भी पता है वो क्षणिक आवेग था बस, उसमें वो भूल हो गई और अब पश्चाताप कर रहे। तो क्या वास्तव में इसमें सुख है? जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा में दुख, बुढ़ापे में बहुत दुख है, व्याधि में दुख, बीमारी आने के बाद कितनी भी अच्छी खाने की चीजें हो खा सकता है व्यक्ति? पूछो उसको, खाओ खाओ सब कहते रहते खाओ खाओ, उसको इच्छा ही नहीं है कुछ खाने की, उसकी पसंदीदा चीजें है सारी सामने, फिर भी इच्छा नहीं है कुछ भी खाने की। चारों ही स्थितियों को साक्षी होकर देखो, गीता में जैसे कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इस देह में कोई सुख नहीं, इस देह में कोई सौंदर्य भी नहीं, जो सौंदर्य दिखा रहा है दिख रहा है वो उत्पन्न किया गया है। किसने उत्पन्न किया? यही उपन्यासकारों ने एक भ्रामक दर्शन उत्पन्न किया है कि इसमें सुख है, ये बहुत सुंदर है, कैसा सौंदर्य इसमें। इस देह के प्रति वैराग, इस देह को देखने के प्रति वैराग, क्या है देखने जैसा इसमें? कुछ है? चमड़ी को निकाल दो और फिर देखो क्या है, मल मूत्र से भरा हुआ बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इससे अतिरिक्त तो यह देह कुछ भी नहीं है। जितनी गंदगी इस देह में है और कहीं नहीं है संसार में, और उसकी ओर आसक्त हो रहे, उसे देखने की कामना है, उसे स्पर्श करने की कामना है। नरक के द्वार है सभी, तीन प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया में है, एक है वाइस, एक है वाइसर, एक है वाइसेस्ट। पहला व्यक्ति जो है वाइस मैन लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, जो बुद्धिमान है वो अपने अनुभव से सीखता है, जीवन में खुद अनुभव किया, पता चला इसमें कुछ नहीं है, फिर छोड़ दिया। वाइसर मैन लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, ये उससे बुद्धिमान है जो दूसरों को देखकर सीखता है कि इनके जीवन में ये इस नरक में गए और इन्होंने क्या पाया। पूछो जाकर गृहस्थियों को क्या सुख है, जो कुमार है वो पूछ सकते हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें उतरने की आवश्यकता नहीं है, जो गए हैं उनसे पूछो क्या अनुभूति है। तीसरे है वाइसेस्ट, सबसे बुद्धिमान वो है जो दोनों से सीख जाते हैं, हु लर्न्स फ्रॉम बोथ एक्सपीरियंस ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड अदर्स। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है पवित्रता, उसकी प्रतिज्ञा रोज करनी है, एक स्वयं से और दूसरा बाबा से। कब करनी है? अमृत वेला करनी है, रोज अमृत वेला बाबा के सामने बैठकर इस प्रतिज्ञा को दोहराना है। एक बार करने से काम नहीं होगा, बार 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 उसको रिपीट करना पड़ेगा। एक लास्ट छोटी सी कहानी बताते हैं और उसके बाद इस क्लास की समाप्ति करते हैं, फिर शाम की चर्चा ब्रह्मचर्य पर होगी। ये कहानी शास्त्रों में आती है। इस कहानी में दिखाया है कि एक युवक राजा आखेट के लिए निकलता है शिकार के लिए, और राह भटक जाता है और किसी दूसरे नगर में पहुंचता है। वहां पर एक राजमहल होता है, वहां प्रवेश करता है और वहां की राजकुमारी को देखता है और बहुत मोहित हो जाता है उस रूपवती कन्या को देखकर, और उसके समीप जाता है, कुछ दिन वहां रहता है और बाद में उससे कहता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है। परंतु ये जो रानी होती है, ये जो राजकुमारी होती है, ये ब्रह्मज्ञानी होती है। अंदर से उसका स्वभाव वैराग का होता है, वो ज्ञानी होती है वास्तव में। वो उसको कहती है कि राजा मैं तुमसे शादी करूंगी पर 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद तुम आ जाना, फिर मुझसे शादी विवाह कर लेना। राजा कहता है ठीक है। इन 15 दिनों में वो जो राजकुमारी होती है वो कुछ ऐसी चीजें खाती है कि जिससे वो दस्त हो जाए, डायरिया, जमाल गोटा या इस तरह की चीजें, और उसका जो भी स्टूल सैंपल जो है, विष्ठा कहो, मल मूत्र कहो, वो एक पॉलीथिन की थैली में बांध बांध के अलग रख देती है। 15 दिन के बाद जब राजा आता है तब तक ये रानी जो होती है ऐसी पतली दुबली सी, पूरे उसके गाल सिकुड़ जाते हैं, कंप्लीट डिहाइड्रेशन। वो तो पहचान ही नहीं पाता है वो कौन है। वो दासी उसको ले जाती है और कहती है ये है महाराज कुमारी। वो कहती है आप? तो रानी उसको राजकुमारी कहती है हां वो मैं ही हूं, परंतु मेरा जो रूप रंग और सौंदर्य है बाजू के कमरे में लटका हुआ है, वो जाके देख के आ जाओ। तो राजा जाता है और देखता है वो सब, उसके मन में घृणा उत्पन्न होती है, मैं कैसा मूर्ख हूं कि देह में आसक्त हो रहा हूं, देह के रंग रूप को देख रहा हूं जो कि नश्वर है। परम वैराग को उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लेता है। तो हमें भी अपने अंदर वैराग का जो सूर्य है वो कभी अस्त ना हो, देह की जो वास्तविकता है उससे हम बेखबर ना हो, समझ का जो मार्ग बाबा ने बताया है उसको समझना है। ये पवित्रता क्या है, क्यों भयभीत हो रहे हैं अपवित्रता से, वो है नहीं कुछ फिर भी भयभीत कर रही है, उसको समझना है। अच्छा, ओम शांति। Thank you.
किसो